नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर से 23,550 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, पूर्वोत्तर भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। सरकार का घरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन, वितरण दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर खुदरा विक्रेताओं को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लद्दाख के सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द की। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर मिसाइल हमला। दक्षिण लेबनान में स्वास्थ्य केंद्र पर इसराइल के हमले में 12 चिकित्साकर्मी मारे गए। और FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सिलचर से 23,550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने सिलचर के अंबिकापुर में 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं में 22,864 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत वाला सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर, लगभग 565 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाला सिलचर टाउन फ्लाईओवर और 122 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला पाथरकंडी कृषि महाविद्यालय शामिल है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि असम की बराक घाटी भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पुल के रूप में उभर रही है। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद दशकों तक इस क्षेत्र की उपेक्षा के लिए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नेतृत्व कर रहा है।
आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ। बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस स्थिति को बदल रही है। हम बराक घाटी को फिर से व्यापार कारोबार का बड़ा हब बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अवसंरचना विकास पर बल देते हुए कहा कि सिलचर शिलांग हाई स्पीड कॉरिडोर के आधारशिला रखे जाने के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये परियोजना पूर्वोत्तर में पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा। श्री मोदी ने कहा कि कैपिटल पॉइंट के पास ट्रंक रोड से सिलचर के रंगीरखारी प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर एलिवेटेड कॉरिडोर का पहला चरण सिलचर की सबसे व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक कम करेगा।
रोड हो, रेल हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ऐसे हर प्रोजेक्ट से बराक वैली नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा लॉजिस्टिक और ट्रेड हब बनने जा रहा है। इससे यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के अनगिनत अवसर बनने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने करीमगंज जिले के पाथरकंडी में एक नए कृषि महाविद्यालय की आधारशिला भी रखी। ये संस्थान असम में कृषि शिक्षा अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। विश्वभर में व्याप्त युद्ध की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि देश के नागरिकों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। श्री मोदी का आज कोलकाता में लगभग 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री लगभग 16,990 करोड़ रुपए की लागत वाली 420 किलोमीटर से अधिक लंबी कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 114 के खंड शामिल हैं। श्री मोदी लगभग 5.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले दुबराजपुर बाईपास के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कई पत्तन और पोत परिवहन संबंधी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी पुरुलिया आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा स्थित गांव किली चेला में बदलाव रैली को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार और कुशासन से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग विकास, स्थिरता और एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो वास्तव में उनकी सेवा करे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने घरों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन दिया है। रिफाइनरी में घरेलू LPG उत्पादन में 30% से अधिक की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को व्यावसायिक LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। सुश्री सुजाता ने बताया कि घरेलू PNG और वाहनों के लिए CNG की आपूर्ति बिना किसी कटौती के सुनिश्चित की जा रही है।
नेचुरल गैस ऑर्डर 9 मार्च 2026 को जो इशू हुआ था कंट्रोल ऑर्डर, उसमें कई सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी ऑर्डर के क्रम में PNG डोमेस्टिक सप्लाई और CNG को बिना किसी कट के PNG सप्लाई इंश्योर की जा रही है और इस स्थिति में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है।
संयुक्त सचिव ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं को ईंधन वितरण के दौरान दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आपूर्ति के अलावा 48,000 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया है।
रेगुलर एलोकेशन से ऊपर 48,000 KL का केरोसिन का एलोकेशन भारत सरकार ने किया है। उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट में एक या दो जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। अल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कोल इंडिया हैज ऑलरेडी इशूड द ऑर्डर सो दैट द कोल इज मेड अवेलेबल टू स्मॉल, मीडियम एंड अदर कंज्यूमर्स।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकिन से बात की और ईरान सहित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर भारत की प्राथमिकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हमलों की पोजीशन, जो हमारा पक्ष है भारत का, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें ताकि कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द।
सरकार ने लद्दाख के स्वर्णम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। उन्हें पिछले वर्ष सितंबर में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के अंतर्गत हिरासत में लिया गया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वर्णम वांगचुक को पिछले साल लेह शहर में उत्पन्न गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर हिरासत में लिया गया था। गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिका के दूतावास परिसर के अंदर मौजूद हेलीपैड को निशाना बनाकर कल रात एक बड़ा मिसाइल हमला हुआ। यह हमला बगदाद पर हुए हमलों में ईरान समर्थित 2 लड़ाकों के मारे जाने के कुछ ही समय बाद हुआ। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। ईरान के सरकारी प्रसारक ने बताया कि बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास के रडार सिस्टम को निशाना बनाने के लिए एक आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। उधर लेबनान के दक्षिणी हिस्से में स्वास्थ्य केंद्र पर हुए इसराइल के हमले में 12 चिकित्साकर्मी मारे गए हैं। लेबनान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमला बिंत जबील जिले के बुज क्लाउडिया गांव में हुआ। इस हमले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स और उनके सहयोगी मारे गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये कुछ ही घंटों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र पर दूसरा हमला था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की महत्वाकांक्षा पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने और इसराइल को नष्ट करने की थी, लेकिन अब उसकी योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीकी केंद्रीय कमान ने ईरान के खर्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की।
ईरानी सरकार की तेल राजस्व पर बहुत अधिक निर्भरता है। इस तेल का अधिकांश हिस्सा चीन सहित एशियाई बाजारों को बेचा जाता है, इसलिए द्वीप पर किसी भी प्रकार की बाधा से देश की वित्तीय स्थिरता और सैन्य अभियानों को जारी रखने की क्षमता पर असर पड़ेगा। होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट होने के कारण इस द्वीप का रणनीतिक सैन्य महत्व और भी बढ़ जाता है। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने खाड़ी देशों में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए द्वीप पर स्थित सुविधाओं का उपयोग किया है। ईरानी सेना ने आज चेतावनी दी कि उसके ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले से अमेरिका की सहयोगी कंपनियों से संबंधित तेल और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तेहरान ने साइबर और बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए एक सूची प्रकाशित की है, जिसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल जैसी प्रमुख अमरीकी कंपनियों को लक्ष्य बनाने की बात भी कही गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
ईरान ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि उसके तेल टैंकरों को होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने दिया जाएगा। बांग्लादेश में ईरान के राजदूत जलील रहीमी जहानाबादी ने कल कहा कि बांग्लादेश की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री तारिक रहमान और ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद ने यह अनुरोध किया था। इसराइल रक्षा बल ने आज ईरान के तबरीज के पश्चिम में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र से नागरिकों को तत्काल निकलने को कहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में आईडीएफ ने चेतावनी दी है कि इसराइल की सेना आने वाले घंटों में इस क्षेत्र में हमला करेगी। ये चेतावनी ईरान के भीतर रणनीतिक ठिकानों पर इसराइल की सेना द्वारा हाल ही में किए गए लगातार हमलों के बाद जारी की गई है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दूतावास की सभी काउंसलर सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। दूतावास के चार भारतीय काउंसलर आवेदन केंद्र कार्यरत हैं और रमजान के दौरान सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले रहते हैं। आपातकालीन स्थिति या किसी भी जानकारी के लिए 2400 घंटे हेल्पलाइन 9656551946 पर कॉल करके या community.kuwait@mea.gov.in पर ईमेल भेजकर दूतावास से संपर्क किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने कहा है कि कल देश भर में 15 लाख से अधिक रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में HPCL ने आश्वासन दिया है कि बॉटलिंग प्लांट और LPG वितरक ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं कि रसोई गैस सिलेंडर नागरिकों के घर तक बिना किसी परेशानी के पहुंचे। FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे से तेलंगाना में खेला जाएगा। मनीषा चौहान के गोल की मदद से भारत इटली को 1-0 से हराकर फाइनल में पहुंचा है। इस जीत के बाद भारत विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर चुका है। भारत ने लगातार तीसरी बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में कल तक लू चलेगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 15 मार्च तक तेज वर्षा की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कल तक ओलावृष्टि के साथ साथ वर्षा हो सकती है। ओडिशा, विदर्भ, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन बिजली चमकने और वर्षा होने का अनुमान है। केरल में स्थित प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर आज शाम 5 बजे मलयालम माह मीनम की मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मासिक पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर 19 मार्च को बंद हो जाएगा। वार्षिक शबरीमला उत्सव के लिए मंदिर 22 मार्च को फिर से खुलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के सिलचर से 23,550 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, पूर्वोत्तर भारत की एक्ट ईस्ट नीति का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता से 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। सरकार का घरों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य आवश्यक सेवाओं को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का आश्वासन। वितरण दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर खुदरा विक्रेताओं को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लद्दाख के सोनम वांगचुक की हिरासत रद्द की। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका के दूतावास पर मिसाइल हमला। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।